बाबा फरीदुद्दीन गणशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब इस बात को देखा कि हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी की खानकाह में एक मुरीद फिरका खिलाफत की दरख्वास्त करता है, ये मुरीद इसलिए दरख्वास्त करता है कि इसकी ख्वाहिश हुई कि उसे उसी तरीके से इस फिरका खिलाफत से नवाजा जाए जिस तरह दूसरे खुलफा को नवाजा गया। तो हजरत शेख ने मुरीद की इस ख्वाहिश के जवाब में फरमाया, आज मुझे माफ कर दो, कल किसी वक्त आओगे तो इस मामले पर गौर करेंगे, फिर जो खुदा की मर्जी होगी वही जाहिर हो जाएगा। मुरीद चला गया, दूसरे दिन फिर आया और खामोशी से गोशे में बैठ गया। मुरीद के चेहरे पर अफसोसगी के आसार थे। आपने हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने मुरीद की तरफ देखा और फरमाया, क्या अब भी तुम्हें फिरके खिलाफत की ख्वाहिश है? रात तुमने ख्वाब में अपनी आंखों से एक पीर और उसके मुरीद का हश्र देख लिया? फरिश्ते उन दोनों को खींचते हुए दोजख की भड़कती हुई आग की तरफ ले जा रहे थे। तुमने अपने इस ख्वाब की हकीकत को समझने की कोशिश की? मुरीद ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश बेहिस हरकत बैठा रहा। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह ताला ने दोबारा अपने मुरीद को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम समझते हो कि इन दोनों का यह इबरतनाक अंजाम क्यों हुआ? इसलिए कि वो खिरके के नाम से दुनिया कमाया करते थे और हर वक्त अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील में मसरूफ रहते थे। इसके बाद हजरत शेख ने दीगर हाजरीन ने मजलिस को मुखातिब करते हुए फरमाया, जब तक इंसान का दिल दुनिया की कसाफतों से पाक ना हो जाए उस वक्त तक मुर्शिद पर फर्ज है कि वो किसी शख्स को खिरका ना दे, और मुरीद के लिए भी लाजिम है कि वो खिरका ना पहने। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ दिन तक तो हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी की सोबतों से फैजियाब होते रहे, लेकिन आपके लिए सफर अभी आगे था। कबल इसके कि मैं अगले वाकयात को बयान करूं, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से मैं चाहूंगा कि कुछ बुनियादी बातें बता दी जाएं, ताकि सिलसिले सोहरावर्दिया के अजीम तर बुजुर्ग, जिनके नाम से सोहरावर्दिया सिलसिला और अबारिफुल मारिफ के नाम से दुनिया में आपकी तालीमात आम हैं, उनको लोग पहचान लें। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह 549 हिजरी 549 हिजरी में सोहरावर्द के मकाम पर पैदा हुए। आपने इमाम मुजद्दुद्दीन से फलसफे और फिक्र की तालीम हासिल की। फलसफा आप पर गालिब था, अक्सर बेशतर आप फलसफे के सहारे बहस किया करते थे। हल्ब एक शहर है, उसमें आपने बहुत से मनादरे जीते, चुनाचे इन मनादरों की वजह से हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के खिलाफ फुकहा हो गए। आपके बाद मुरीदों ने समझाने की बहुत कोशिश की कि आप अपने नजरियात में एतदाल रखें, मगर शेख दिलो दिमाग के मजहब को एक खास जाविये से लिखते थे। आपके बयान में और आपके अंदाज में रोज बरोज इजाफा होता चला गया। चुनाचे चंद मशहूर फुकहा ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक मुशतरका खत लिखा और लिखा, यहां शेख शहाबुद्दीन नामी एक दरवेश है जिसके उलझे हुए ख्यालात से मुसलमान गुमराह होते जा रहे हैं। हमारी दरख्वास्त है कि अहले ईमान को फौरी तौर पर इस फितने से निजात दिलाई जाए। फुकाहा की शिकायत के जवाब में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने बेटे सुल्तान जाहिर को, जो हल्ब का हुक्मरान था, एक खत लिखा और जिसमें वाजह तौर पर तहरीर किया गया कि हमारी सल्तनत के मशहूर और मोतबर फिक शेख शहाबुद्दीन के खिलाफ गवाही दे चुके हैं, इसलिए एक दरवेश को जिंदा ना छोड़ा जाए जो लाखों अहले ईमान की जिंदगी से खेल रहा हो। सुल्तान जाहिर ने एक लम्हा जाहिर किए बगैर अपने बाप के हुक्म की तामील की और हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी अपने खून में नहा गए। इसीलिए तसव्वुफ की बास किताबों में आपको शेख शहाबुद्दीन मक्तूल लिखा गया है। इस सिलसिले में एक रिवायत यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने नहीं बल्कि उसके बेटे सुल्तान जाहिर ने बराह रास्त शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के कत्ल का हुक्म जारी फरमाया था। जब हजरत शेख को इस हकीकत का इल्म हुआ कि फुकाए हलब कुफर के इल्जाम में आपके कत्ल का फतवा दे चुके हैं, तो आपने सुल्तान जाहिर से दरख्वास्त की, मुझे एक मकान में कैद कर दिया जाए, सुल्तान की तरफ से खाने पीने की चीजों का एहतमाम किया जाए, मगर मैं जाती तौर पर एक लुकमा भी अपने हलक से नहीं उतारूंगा यहां तक कि वो दिन आ जाएगा जब शिद्दत, नातवानी और भूख मेरे जिस्म को फना कर देगी। इस तरह सुल्तान के हुक्म की भी तामील हो जाएगी और फुकाह की जमात को भी करार आ जाएगा। बाज मोतबर तारीख नवीसों के नजदीक ये रिवायत मोतबर नहीं है। दरअसल वाकया यही है कि उस जमाने के मशहूर फुकाहा ने हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के बाज अकवाल को कुफर के दायरे में शामिल करके आपके कत्ल के फतवे को जारी कर दिया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन ने यूबी से दरख्वास्त की कि उस शख्स के बोझ से जमीन को हल्का कर दिया जाए जिसके अफकार और ख्यालात मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मजीद तहकीक कराए बगैर अपने बेटे सुल्तान जाहिर को हुक्म दिया कि वो मिल्लत इस्लामिया को शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी से निजात दिला दे। अलगर्ज तसव्वुफ में सिलसिले सोहरावर्दी के बानी को कत्ल कर दिया गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद से रुखसत होकर सिस्तान जा चुके थे। कुछ दिनों के बाद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सिस्तान पहुंचे तो वहां एक मशहूर बुजुर्ग हजरत औहदुद्दीन किरमानी की खिदमत में हाजिर हुए। शेख औहदुद्दीन किरमानी रूहानियत में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। आपको करामत देखने और दिखाने का बड़ा शौक था। जब भी कोई बुजुर्ग आपकी खानकाह में दाखिल होता तो शेख किरमानी अपनी करामत का इजहार करते और उस बुजुर्ग को भी मजबूर करते कि वो अपनी रूहानी ताकत लोगों को दिखलाए। एक दिन हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह और दूसरे बुजुर्ग मजलिस में बैठे हुए थे, यानी कैफियत ये थी कि बहुत सारे बुजुर्ग उस महफिल में थे। हजरत औहदुद्दीन किरमानी ने अपनी रिवायत के मुताबिक सबसे ख्वाहिश की और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि अपने अपने करामा दिखाइए। जब बात खत्म कर चुके तो आपने इंतजार नहीं किया बल्कि खुद ही अहले मजलिस को मुखातिब करते हुए फरमाया कि यहां का हाकिम मेरी बहुत दिलाजारी करता है, आज वो चौगान खेलने गया हुआ है कहीं, अब अल्लाह ही है कि वो हाकिम को सही सलामत वापस ले आए। अभी मजलिस में हजरत शेख औहदुद्दीन किरमानी के अल्फाज गूंज रहे थे कि किसी शख्स ने बाहर से आकर इत्तला दी कि वह हाकिम घोड़े से गिरकर मर गया। मजलिस में मौजूद तमाम बुजुर्ग शेख किरमानी की करामत देख के हैरान रह गए। उसके बाद दूसरे बुजुर्गों ने भी अपने अपने करामात का इजहार फरमाया। आखिर में शेख किरमानी ने हजरत बाबा फरीद से कहा, फरीद तुम भी अपनी कोई करामत दिखाओ। बड़ा मुश्किल मरहला था। बाबा फरीद ने बहुत ही आजिज़ी से फरमाया, मैं तो एक तालिबे इल्म हूं और बुजुर्गों से सीखने के लिए हाजिर हुआ हूं, मुझे क्या आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता। बाबा फरीद अपनी आजिज़ी का इजहार करते रहे मगर औहदुद्दीन किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कोई बात तस्लीम नहीं की। चुनांचे बाबा फरीद मजबूर हो गए। आपने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में खुदा बंदे जुलजलाल से दरख्वास्त करते हुए फरमाने लगे, अर्ज किया, ए अपने बंदों के अयूब की पर्दापोशी करने वाले, तुझ पर सब बातें जाहिर रोशन है, तू खूब जानता है कि मैं तेरा एक गुनाहगार बंदा हूं मगर इन लोगों के दरमियान बैठा हूं जो बेशुमार कमालात और रूहानी रखते हैं। मेरी जात न कोई करामत रखती है न इसमें कोई बात पोशीदा है और न ही मैं करामत के इजहार को मुनासिब समझता हूं, फिर भी मेरे सर से इन कड़े लम्हात को टाल दे और मुझे सुरखू फरमा दे। अभी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने ख्याल में ही थे और अपने रब के हुजूर दुआ फरमा रहे थे कि यकायक तसव्वुरात के पर्दे पर आपके पीर मुर्शिद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का चेहरे मुबारक रोशन हुआ। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमा रहे थे, बाबा फरीद दुखी क्यों होते हो, जिस खुदा ने तुम्हें सुल्तानुल हिंद के आस्ताने आलिया तक पहुंचाया है वही हर हाल में तुम्हारी मुश्किल कुशाई करेगा। इन बुजुर्गों से कहो कि अपनी आंखें बंद कर लें। फिर उन्हें तुम्हारी करामत नजर आ जाएगी। इन अल्फाज के साथ ही हजरत कुतुब का पुरनूर चेहरा बाबा फरीद की नजरों से ओझल हो गया। आपने घबरा कर आंखें खोल दी। शेख औहदुद्दीन किरमानी ने बाबा फरीद की कैफियत देखी तो फरमाया, फरीद खामोश क्यों हो? क्या अभी तक इस मंजिल पर नहीं पहुंचे हो कि तुम करामत दिखा सको? मंजिल तो मेरी बहुत दूर है, मगर आप हजरात अपनी आंखें बंद कर लें तो फिर देखें खुदा क्या जाहिर करता है। शेख किरमानी और दूसरे बुजुर्गों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। यकायक तमाम बुजुर्गों ने देखा कि वो सीस्तान के बजाय खाने काबा में मौजूद हैं। खुद बाबा फरीद भी उन दरवेशों के साथ बैतुल्लाह में मौजूद हैं। कुछ देर बाद जब तमाम दरवेशों ने आंखें खोली तो नजरों के सामने शेख किरमानी की खानकाह थी और हाजरीन मजलिस खामोश बैठे नजर आ रहे थे। शेख औहदुद्दीन किरमानी रहमतुल्लाह तआला अलैह बेख्तियार होकर फरमाया, फरीद इस नौ उम्री में तुम्हें अल्लाह ने यह मकाम तुम्हें अता फरमाया, खुदा तुम्हें मुबारक फरमाए। शेख किरमानी के साथ दूसरे दरवेश भी बाबा फरीद के रूहानी तसरुफ का एतराफ कर रहे थे, मगर बाबा फरीद की मुंतजर नजरें सिर्फ आंसू बहा रही थी। कैसे किसी को ये बताए कि ये मुर्शिद का करम था, नबी की अता थी और अल्लाह का करम था कि जिसने बाबा फरीद बिन शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के जरिए सबको बैतुल्लाह की ज़ियारत करवा के वापस सिस्तान पहुंचा दिया। हज़रत बाबा फरीद बिन शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह सिस्तान से रुख्सत होकर बदख्शां पहुंच गए। यहां आपकी मुलाकात हजरत शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह से हुई। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे। हजरत शेख अब्दुल वाहिद इश्क खुदाबंदी में इतने ज्यादा गर्क थे कि वो कभी दुनिया की तरफ आंख उठाकर देखते ही नहीं थे। इसीलिए आप शहर से निकलकर एक गार में जाकर रहना शुरू कर दिया आपने। और जब कोई दुनिया परस्त हजरत शेख अब्दुल वाहिद की खिदमत में हाजिर होता और अपने किसी काम के लिए आपसे दुआ की दरख्वास्त करता तो हजरत शेख नहायत तल्ख लहजे में फरमाते, कब तक तुम इस मुर्दार दुनिया के पीछे भागते रहोगे? क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए मेरे पास आए और उस भड़कती हुई आग से बचने की कोशिश नहीं करता कोई भी कि जिसका ईंधन इंसान है? तुम मेरे पास क्यों नहीं आते इसके लिए कि मैं तुम्हारे हक में दुआ करूं कि अल्लाह ताला तुम्हें अपनी आफियत में रखे? तुम मेरे पास दुनिया मांगने आते हो? गौर से सुनो, मेरा कोई रिश्ता दुनिया से नहीं है। मैंने इस करीहुल मंजर औरत को तलाक दे दी है, जाओ और किसी के दरवाजे पर जाओ, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाबा फरीद बिन शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह जानते थे कि हजरत शेख अब्दुल वाहिद मुलाकातियों से बेजार रहते हैं, फिर भी एक अल्लाह वाले की ज्यारत का शौक पैदा हो गया। आप गार तक पहुंच गए। डरते डरते बाबा फरीद बिन शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गार के दरवाजे पर कदम रखा। एक तेज आवाज गूंजी, ए इश्क वाले इधर आ, तुझ पर मेरे दरवाजे खुले हैं। बाबा फरीद ने पहचान लिया कि यह शेख अब्दुल वाहिद की आवाज है। बाबा फरीद गार के अंदर पहुंचे तो आपने बहुत ही कमजोर शख्स को देखा। हड्डियों का ढांचा था, जिसकी एक टांग कटी हुई थी। बाबा फरीद आगे बढ़े, मगर जब गार के दरमियान में पहुंचे तो हजरत शेख अब्दुल वाहिद की आवाज दोबारा आई। आपने फरमाया, फरीद मेरे करीब हरगिज ना आना, जलकर खाक हो जाएगा। मुझसे दूर भी ना रहना कि तुझ पर जादू का असर हो जाएगा। बाबा फरीद पर उनकी इतनी हैबत तारी हुई कि आपके कदम रुक गए, वहीं जमीन पर बैठ गए। आपने फरमाया, मैं तो ऐसा मेजबान हूं कि खाक के सिवा कुछ भी नहीं देता, क्योंकि मैं खुद ही खाक हो गया हूं। बाबा फरीद ने इस मर्द कलंदर की खिदमत में सलाम पेश किया और बड़ी मोहब्बत के साथ फर्श पर बैठते हुए आपके सामने दोजान हो गए। बाबा फरीद ने किया, हजरत शेख इश्क खुदाबंदी क्या है फरमाइए, मुझे देख, मैं इश्क के अदना तरीन मिसाल हूं। हजरत शेख अब्दुल वाहिद ने जवाबन फरमाया, मेरे जिस्म पर नजर कर, ये आतिशे फिराक में बूंद बूंद पिघल रहा है, कुछ दिनों की बात है, खाक का हिस्सा बन जाएगा। मेरी पैर की तरफ देख, मैं एक टांग से महरूम हूं। मुझे दुनिया को तलाक दिए हुए 25 साल हो गए हैं। मैं 70 साल तन्हाई में गुजार चुका, सारा कुछ छोड़ दिया। बहुत दिन पहले इस गार में एक औरत आई, उसके हुस्न को देखकर मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी गार से बाहर चला जाऊं। मगर जैसे ही कदम उठाया, एक गैबी आवाज ने मेरे पैरों में हमेशा के लिए जंजीर डाल दी। कहने वाला कह रहा था, कहां जा रहे हो? मोहब्बत का दावा तो तुमने हमसे किया था। मैं फौरन वापस लौट आया और फौरन अपनी एक टांग काट कर फेंक दी। अब 30 साल से शर्म नदामत की आग में झुलस रहा हूं कि कयामत के दिन अपने दोस्त को ये चेहरा किस तरह दिखाऊंगा। तो शेख अब्दुल वाहिद की दास्तान जब सुनी तो हजरत बाबा फरीद इस कदर रोए कि आपकी हिचकियां बन गई। अपने आप से फरमाने लगे, फरीद तुझे क्या पता कि इस सरजमीन पर उसके कैसे कैसे जानसार मौजूद हैं। बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हफ्ते तक शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ उसी गार में रहे। आप फरमाते हैं कि बड़ी अजीब बात है कि इस गार में कोई नजर ना आता था, मगर रात के वक्त खाने के लिए दूध और खजूरें खुद ब खुद मौजूद हो जाती थी। कुछ दिन बाद हजरत बाबा फरीद बदख्शां के लिए रवाना होना चाहते थे। आपने हजरत शेख अब्दुल वाहिद से इजाजत तलब की। हजरत शेख ने खामोशी इख्तियार की। आप समझ गए कि अब शेख की अभी मर्जी नहीं है। फिर आधी रात गुजरने के बाद हजरत शेख अब्दुल वाहिद ने बाबा फरीद को मुखातिब करते हुए फरमाया, फरीद तू भी चला जाएगा। शेख के लहजे से उनका दर्द झलक रहा था। हाँ, सब कुछ जाने ही के लिए तो है, कोई भी चीज रुकने के लिए नहीं है। शेख मोहतरम, अगर आप हुक्म दें तो कुछ दिन और ठहर जाऊं। बाब फरीद ने अदब और एहतराम के साथ अर्ज किया। चंद रोज कयाम से क्या होगा, जुदाई की मंजिल तो सर पर है। हते शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत उदास थे। चुनाचे आपने हते शेख से इजाजत लेने के लिए अर्ज किया तो आपने फरमाया, तुझे मैं अपनी दुआओं के साए में रुख्सत करूंगा, बस एक रात और ठहर जा। इतना कहकर हजरत शेख अब्दुल वाहिद मुराकबे में चले गए और बाबा फरीद जिक्र इलाही में मशगूल हो गए। सुबह सूरज तुलू हुआ तो बाबा फरीद ने हजरत शेख अब्दुल वाहिद से इजाजत तलब की। हजरत शेख ने एक नजर बाबा फरीद की तरफ देखा और फिर हमजदा लहजे में फरमाने लगे, फरीद तू मुझे बहुत पसंद है, तुझे अपना दोस्त बना लेता, मगर क्या करूं कि किसी और की दोस्ती का दम भर चुका हूं, अपने इस अहद को तोड़ नहीं सकता। अगर इसको तोड़ दिया तो हलाक हो जाऊंगा, फिर भी तू मेरे दिल से दूर नहीं रहेगा। जब तक जिंदा रहूंगा अपने अल्लाह से तेरे लिए आफियत तलब करता रहूंगा। ये कहकर हजरत शेख अब्दुल वाहिद बेसाखी के सहारे खड़े हुए और फिर बाबा फरीद को सीने से लगा लिया। इस वाकये की तरफ इशारा करते हुए बाबा फरीद फरमाते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा पूरा जिस्म जल उठा हो। यह हजरत शेख अब्दुल वाहिद का सोज़े इश्क था जो नजदीक आने वालों को भड़कते हुए शोलों के मानिंद महसूस होता था। बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की अजीब हालत थी। हजरत शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको सीने से लगाए हुए फरमा रहे थे, फरीद हम तो खानमा बर्बाद हैं, ना हमारी कोई मिल्कियत ना कोई हमारी जागीर, बस है तो एक ही जागीर, वो इश्क है। एक चिंगारी तेरी नजर करता हूं, इस चिंगारी के बगैर दरवेश दरवेश नहीं होता, नेकियों और इबादतों का सौदागर बन जाता है। बस अब जा, तेरी मंजिल बहुत दूर है। अल्लाह तेरे कदमों को इस्तकामत बख्शे और तेरे सर पर हमेशा उसकी रहमत साया सदन रहे। अगर कभी तुझे ये जासोख्ता याद आए तो उसके हक में भी दुआ करना कि ये आग ये इश्क कभी बुझने ना पाए। यहां तक कि तमाम आजा दिल दिमाग और रूह जलकर खाक हो जाए। बा फरीद तारी गार से निकल आए, मगर इस तरह के आपके कदम थके थके थे और आंखों से आंसू जारी थे। बा फरीद को हजरत शेख अब्दुल वाहिद से बिछड़ने का बहुत गम था, मगर मजबूर थे कि अभी आपकी मंजिल बहुत दूर थी। आपने बदख्शां को खैरबाद कहा और चिश्त की तरफ रवाना हो गए। ये वो मकाम है जिसकी नस्बत से सिलसिले चिश्तिया ने शोहरत हासिल की है। यहां पहुंचकर बाब फरीद बिन शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के रोजे मुबारक की ज्यारत के लिए हाजिर हुए। हजरत ख्वाजा अबू यूसुफ चिश्ती का शुमार सिलसिले चिश्ती के नाम पर बुजुर्गों में होता है। जरूरत है इस बात की कि यहां सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गान दीन का शजरा और तफसीलात भी कुछ बयान की जाए, ताकि जो सिलसिले से वाबस्ता लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो कि हमारा विरसा है, हम उसको समझ लें कि हम हजरात साहिबान चिश्त क्यों मौसूम है, क्यों हमारी नस्बत है। सिलसिले चिश्तिया का आगाज अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु से होता है। मशहूर रिवायत के मुताबिक हजरत अली करम अल्लाह वजहल करीम ने हजरत ख्वाजा हसन बसरी को फिरके खिलाफत अता फरमाया। ख्वाजा हसन बसरी को बरे सगीर पाक और हिंद के बेशतर लोग महज एक सूफी बुजुर्ग की हैसियत से जानते हैं, मगर जिनकी निगाहें तारीख शनास हैं वो ये भी जानते हैं कि हजरत हसन बसरी एक अजीम मुहद्दिस थे और दर्जे इमामत पर फाइज थे। और दर्जे इमामत भी आपका इस तरह कि आप इमाम आजम अबू हनीफा और हजरत इमाम मालिक के भी असाज़ा या बुजुर्गों में थे, और ये आपकी इज्जत बहुत किया करते थे, इमाम मालिक और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को तमाम औलिया इकराम के दरमियान ये शरफ हासिल है कि आपकी वालदा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा की कनीज थी, और बचपन में जब हजरत हसन बसरी की वालदा किसी काम में मसरूफ होती और आप रोने लगते तो उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदिल्लाह ताला अन्हा आपको गोद में उठाकर अपना दूध पिला देती। हजरत इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत हसन बसरी के कलाम में जो गैर मामूली वजाहत और हिकमत पाई जाती है वो सब इसी मुकद्दस शीर ख्वारगी का सदका है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को हजरत उम्मे सलमा के ताल्लुक से दूसरी अजवाज मुताहरात के घरों में भी आने जाने का मौका मिलता था। विलादत के बाद जब आपको अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया तो मुसलमानों के अजीम और जलील खलीफा ने बेख्तियार फरमाया, ये बहुत ही खूबसूरत है, इसका नाम हसन रखो। हजरत हसन बसरी को 120 सहाबा इकराम की खिदमत में हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ। उम्मुल मोमिनीन हजरत सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी तरबियत करती और हमेशा आपके लिए दुआ फरमाती रहती कि अल्लाह हसन को दुनिया का रहनुमा बना दे। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी में बेशुमार वाकयात हैं जो तारीख के बहुत से औराक पर महफूज हैं। एक बार हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस दर्स जारी थी, आप बयान फरमा रहे थे, अचानक हाजरीन पर सकता तारी हो गया। हज्जाज बिन यूसुफ अपने सिपाहियों और तलवारों के साथ उनके मदरसे में दाखिल हुआ। लोग घबरा गए, सबके सांसें रुक गई, बहुत से लोग हज्जाज बिन यूसुफ के खौफ से खड़े हो गए और सोचने लगे कि आज हसन बसरी का इम्तहान है। वह हज्जाज बिन यूसुफ की ताजीम के लिए खड़े हुए हैं या दर्स में मशगूल रहते हैं, लोग अपने अपने जहन के मुताबिक सोचते रहे, मगर हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वाली इराक की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। आपके सामने दुनिया का सफाक तरीन इंसान खड़ा था। बिलाखिर जब इमाम हसन बसरी ने अपना वाज खत्म कर लिया तो हज्जाज बिन यूसुफ ने पुकार कर कहा, अगर तुम किसी मर्द खुदा से मिलना चाहते हो तो हसन का चेहरा देख लो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत याफ्ता यही वो हसन है جن سے سلسلہ چشتیہ کو دنیا میں فروغ حاصل ہوا. آپ نے زندگی بھر کی دولت اور اقتدار کی نفی کی اور پھر 4 محرم 111 ہجری کو اللہ کی بارگاہ میں آپ واپس چلے گئے. حضرت امام حسن بصری دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے حضرت شیخ عبد الواحد بن زید کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور نصیحت فرمائی, اے عبد الواحد, اس عظیم امانت کی حفاظت کرنا, ورنہ حشر کے دن اللہ کے سامنے شرمسار رہو گے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں حضرت عبد الواحد سے مراد وہ عبد الواحد نہیں ہے جو بدخشاں میں ایک تاریخ غار میں تھے اور جن سے حضرت باب فرید بن شکر رحمۃ اللہ تعالی ملے تھے. حضرت شیخ عبد الواحد بن زید 177 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے. جب آپ چلے گئے تو جاتے ہوئے آپ نے سلسلہ چشتیہ کی امانت حضرت فضیل بن ایاز کو منتقل فرمائی. فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ فقہ میں امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, اور روایت میں ہے کہ آپ اپنے عہد شباب میں رہزنوں اور قزاقوں کے سردار تھے, یعنی ڈاکوؤں کے آپ سردار تھے. پھر جب غیب سے ہدایت ہوئی تو اولیاء کی سرداری کے منصب پر فائز ہوئے. خلیفہ ہارون رشید آپ کے بارے میں کہا کرتا تھا, حقیقتاً بادشاہ تو فضیل بن ایاز ہیں. پھر 187 ہجری میں یہ شہنشاہ معرفت زمین میں گم ہو گیا, مگر جانے سے پہلے اپنا خرقہ خلافت حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کو دے دیا. تو ابراہیم بن ادم بلخ کے حکمراں تھے, مگر جب عشق کی آگ آپ کے دل میں جلنے لگی تو تخت و تاج کو چھوڑ کر قصر شاہی سے یہ کہتے ہوئے نکل آئے, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ تیری رضا اور تیرے کرم کا طلبگار ہوں, میں حاضر ہوں. بے شمار دلوں کے میل کو دھونے والے حضرت ابراہیم بن ادم 265 یا 267 میں دنیا سے رخصت ہوئے. وفات سے کچھ دن پہلے آپ نے حضرت حذیفہ مراشی کو خرقہ خلافت پہنایا اور تلقین فرمائی, حذیفہ میں تجھے جو لباس پہنا رہا ہوں وہ بہت حساس و نازک ہے, ریاکاری کے پتھر سے شیشے کے اس قبا کو محفوظ رکھنا, ورنہ ایک کنکری سے یہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اسے غلاظت سے بچانا کہ ساری دنیا گناہوں کا تالاب ہے جس کا پانی گلی گلی اور کوچے کوچے بہ رہا ہے. بہت احتیاط سے قدم اٹھانا کہ اس کثیف گندے پانی کی ایک چھینٹ بھی پورے لباس کو داغدار کر دے گی. حذیفہ کا خاندانی نام خواجہ سدید الدین تھا. آپ مرش کے رہنے والے تھے جو شام کے قرب میں ایک آباد شہر تھا, اسی لیے آپ کو مرشی کہا جاتا ہے. حذیفہ نے 7 سال کی عمر میں نہ صرف قرآن کریم حفظ کر لیا بلکہ 7 مشہور قرأتوں میں بہت مہارت حاصل کر لی. آپ کا طریقہ تھا کہ جس درویش سے بھی ملاقات کرتے اس سے اپنے حق میں دعائے خیر کراتے. حضرت فضل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت حذیفہ مرشی کو بچپن میں ایک بار دیکھا تھا. حضرت بایزید بستامی نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا, حذیفہ مرد خدا ہے جو آگے جا کر اپنی منزل مقصود پر پہنچے گا. حضرت حذیفہ مرشی نے پیرانے چشت کا خرقہ خلافت حضرت حبیرہ بصری کو منتقل کیا اور عالم خاکی سے عالم بالا کی طرف تشریف لے گئے. حضرت حبیرہ بصری رحمتہ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. آپ کو ناصر شریعت اور امام طریقت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت حبیرہ بصری نے چشتیہ سلسلے کی امانت حضرت شیخ محشاد کے لیے محفوظ کر دی. حضرت شیخ محشاد رحمتہ اللہ تعالی علیہ ایک بہت امیر خاندان کے فرد تھے, مگر جب آپ درویشی کی طرف راغب ہوئے تو ساری دولت محتاجوں میں تقسیم کر دی, یہاں تک کہ اپنے افطار کے لیے بھی کوئی چیز باقی نہ رہنے دیتے. تمام سرمایہ لٹا دینے کے بعد حضرت شیخ نے دست دعا بلند کی और रिक्कत आमेज लहजे में अर्ज करने लगे, अल्लाह मेरे और तेरे दरमियान जो हलाक कर देने वाली शय हाइल थी, मैंने उसे रास्ते से हटा दिया है। अब मुझे तेरी रजा के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। 14 मुहर्रम 299 हिजरी को मारिफत का आफ्ताब जियाबार बुझ गया, मगर गुरु होने से पहले हजरत शेख महशाद रहमतुल्लाह ताला ने पीराने चिश्त से हासिल करदा रोशनी हजरत अबू इसहाक चिश्ती को मुंतकिल कर दी। हजरत अबू इसहाक चिश्ती रहमतुल्लाह ताला ले शाम के रहने वाले थे। ये वो पहले बुजुर्ग हैं कि जिनके नाम के साथ चिश्ती का लफ्ज नजर आता है। चिश्त खुरासान के एक मशहूर कस्बे का नाम। इस कस्बे में कुछ बुजुर्गान दीन ने रूहानी तरबियत का एक बड़ा मरकज कायम किया था, जिसे बाद में गैर मामूली शोहरत हासिल हुई, और वो रूहानी निजाम इसी मकाम की निस्बत से चिश्तिया कहलाने लगा। हजरत अबू इसहाक चिश्ती ने विसाल से पहले हजरत अबू अहमद चिश्ती को खिरका खिलाफत अता किया और फरमाया, अबू अहमद मखलूक खुदा बीमार है, उसकी मसीहाई करो। हजरत अबू अहमद चिश्ती 355 हिजरी में दुनिया से रुख्सत हुए। आपने अपने साहिबजादे हजरत शेख अबू मोहम्मद चिश्ती को पीराने चिश्त की अमानत मुंतकिल की। हजरत शेख अबू मोहम्मद चिश्ती के बाद हजरत अबू यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह इस रूहानी खानदान के वारिस करार पाए और आपने 459 हिजरी 459 हिजरी में वफात पाई। हजरत अबू यूसुफ चिश्ती के रूहानी वारिस हजरत हाजी शरीफ जिंदनी थे रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत हाजी शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह ताला ने हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की तरबियत फरमाई। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह जलाल से वो खुर्शीद मारिफत तुलू हुआ, जिसकी रोशनी से पूरी सरजमीन हिंद जगमगा उठी। इसी मर्द बासफा को आज की दुनिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के नाम से पहचानती है, जिसके आस्थाने पर 1 लाख से ज्यादा सरकश राजपूत अपने गर्दनों को झुकाकर कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे और अपनी जिंदगियों को अल्लाह के नबी के दरवाजे पर वक्फ कर दिया। हजरत सुल्तानुल हिंद के बाद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज हुए। अहले कुफर के दिलों को इस कदर फतह किया कि पत्थर के पुजारियों ने जुन्नार तोड़कर फेंक दी और अपने हाथों से कस्ते का निशान खुरच कर फेंक दिया। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अगरचे अभी तक बाबा फरीद के सर पर दस्तार खिलाफत नहीं बांधी थी, लेकिन अहले नजर इस राज से बाखबर थे कि खानदान चिश्त का वारिस यही नौजवान होगा जो पीर मुर्शिद के हुक्म से मुख्तलिफ मुल्कों में सरगर्म सफर है, औलिया से फैज हासिल कर रहा है, दरबदर इल्म की तलाश में घूम रहा है कि मुर्शिद का हुक्म यही है, अल्लाह की रजा यही है और नबी यही चाहता है। बदख्शां से रुखसत होकर बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह चिश्त पहुंचे और मशहूर बुजुर्ग हजरत अबू यूसुफ चिश्ती के मजार पर हाजिरी दी। एक दिन किसी बुजुर्ग के मजलिस में दीगर सूफिया के साथ बाबा फरीद भी मौजूद थे। गुफ्तगू के दौरान एक बुजुर्ग ने साहिब मजलिस से अपना ख्वाब बयान करते हुए फरमाया, कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी मौत वाकई हो चुकी है, मेरी रूह शदीद इस्तराब में मुबतला है, मेरी रूह बहुत परेशान है। साहिब मजलिस ने दरवेश का ख्वाब सुना और अपने इल्म के मुताबिक ताबीर बयान की। जब वो बुजुर्ग खामोश हो गए तो हजरत बाबा फरीद नहायत अदब के साथ साहिब मजलिस से मुखातिब हुए, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस ख्वाब के सिलसिले में कुछ अर्ज करूं। साहिब मजलिस ने नौजवान के ताबनाक चेहरे की तरफ देखा, फिर शफकत से फरमाया, इल्म किसी की मीरास नहीं, अगर तुम इस ख्वाब को किसी और जाविये से समझ सके हो तो बेझिझक होकर अपना मफहूम बयान करो, मकसद तो यह है कि किसी तरह ख्वाब की ताबीर हासिल की जाए, मुमकिन अल्लाह ताला तुम्हारे जहन रसा पर ख्वाब की सही ताबीर मुनकशिफ कर दे जो हम तक पहुंचे। चुनाचे हजरत बाबा फरीद ने शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह उन बुजुर्ग से मुखातिब हुए जिन्होंने ख्वाब देखा। इस ख्वाब में मौत से मुराद हकीकी मौत नहीं, अपनी कम इल्मी के बावजूद जहां तक मैं समझ सका हूं इसके मुताबिक मुझे महसूस होता है कि जैसे आपसे फजर की नमाज कजा हो गई हो। तमाम मजलिस पर सुकूत तारी हो गया। जैसे ही बाबा फरीद खामोश हुए, उन बुजुर्ग ने बेख्तियार होकर कहा, नौजवान तुम्हारी पेश करदा ताबीर बिल्कुल दुरुस्त है, वाकई आज मेरी फजर की नमाज कजा हो गई। जब मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मर चुका हूं तो शिद्दत खौफ से मेरी आंख खुल गई। मैंने घबरा कर चारों तरफ देखा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि नमाज फजर का वक्त गुजर चुका है और सूरज तुलू हो रहा है। जब दरवेश ने नमाज फजर की कजा का एतराफ कर लिया तो बाबा फरीद ने फरमाया, नमाज का कजा हो जाना भी एक मुसलमान के लिए मौत की हैसियत रखता है। मेरे नजदीक यही आपके ख्वाब की ताबीर है। बाबा फरीद की इस गुफ्तगू से हाजरीन बहुत खुश हुए। फिर साहिब मजलिस ने बाबा फरीद के बारे में पेशगोई करते हुए फरमाया, ये नौजवान बहुत जल्द उफक मारिफत पर खुर्शीद ताबनाक बनकर उभरेगा। अल्लाह अकबर। फिर ऐसा ही कुछ हुआ।